ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा से हम इस बड़े ही प्राचीन और पवित्र क्षेत्र पे आए हैं। जब भगवान अंतर्धान हुए अपनी लीलाओं को समाप्त करते, उस समय राजा परीक्षित को सब कार्यभार सौंपा दिया गया। तो राजा परीक्षित के ऊपर पूरे विश्व का भार जो है, राज्य कार्यभार जो है वो आ गया। और कृष्ण भगवान के जो पुत्र के पुत्र के पुत्र थे, रुक्मिणी के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध उषा का पुत्र का नाम है बज्रनाभ। तो बज्रनाभ को राजा परीक्षित ने पूरे ब्रजमंडल का अधिकार दे दिया। और ब्रजमंडल बज्रनाभ को एक विशेष आज्ञा थी कि जहाँ जहाँ भगवान ने लीला किया ब्रजभूमि में, वहाँ सब जगह भगवान के विग्रहों को स्थापन करके उनकी पूजा अर्चा भी स्थापन करना है। ये विशेष कार्य बज्रनाभ को दिया गया। तो बज्रनाभ ने सभी ब्रज में जाकर बहुत प्राचीन विग्रहों को स्थापन किया है। जैसे राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, गोपीनाथ जी, जो छह विग्रह गोस्वामियों के हैं, फिर बलदेव जी, दाऊ जी महाराज, और गोकुल के ठाकुर जी महाराज, नंदगांव के महाराज, जगह जगह जहाँ जहाँ जितनी प्राचीन मूर्तियाँ सब भी बज्रनाभ की बनाई हुई। और बज्रनाभ की ऐसी मान्यता है कि उन्होंने उस समय उत्तरा देवी वहाँ पर उपस्थित थी, तो उन्होंने विग्रह बना बनाकर उत्तरा देवी को दिखाए। जब पहला विग्रह बना तो उन्होंने कहा कि इनके चरण कमल जो है वो भगवान के समान है, तो उसको मदन मोहन जी के रूप में स्थापन किया गया। दूसरे विग्रह बनाए तो उन्होंने कहा कि इनके वक्षस्थल जो है वो भगवान के समान है, तो उनको राधा गोविंद देव के रूप में स्थापन किया गया, जो रूप गोस्वामी के पूजित भगवान हैं। और जब और मूर्ति बनाए तो उनको उन्होंने बताया कि इनका मुख कमल जो है वो साक्षात भगवान के समान है, तो फिर वो राधा गोपीनाथ जी के रूप में वृंदावन में स्थापित किया गया। और यहाँ पर इस जगह पर जो विग्रह है वो भी बज्रनाभ ने स्थापित किया गया है, श्री श्री गरुड़ गोविंद जी महाराज। बड़ा आप माता जी मुझे बता रही थी, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति है इस विग्रह में। हाँ, आप देखेंगे तो आपको अनुभव होगा उसका, कि बड़ा विशेष विग्रह है। ब्रजभूमि में कहीं भी भगवान को भगवान के रूप में भक्तों ने उनके साथ में अपना संबंध नहीं किया है, क्योंकि यह भूमि में भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। भगवान जो अपनी स्थिति है भगवान की, उसको भी यहाँ त्याग कर देते हैं प्रेम के वश। हाँ, प्रेम का प्रभाव के होने के वजह से वो अपना जो, जैसे कोई अधिकारी होता है ऑफिस के अंदर, तो वो ऑफिस में सांप बन के बैठता है, वहाँ पर कोई माता पिता किसका नहीं होता है वो, और जो उसके माता पिता है पति पत्नी उनको वहाँ बुलाता नहीं, वो केवल अपने व्यावसायिक अधिकार में रहता है वहाँ पर, और वो कभी भी ऐसे लुंगी में या टी शर्ट में ऐसे आके घूमता नहीं वहाँ पर वो, क्योंकि उसकी वो ऑफिशियल जगह है, वहाँ पर वो काम करता है, उसका एक अधिकार है, उसका एक पोजीशन है, उसका वहाँ एक सम्मान है। तो वो सब जो भगवान की स्थिति है वो वैकुंठ में है, भगवान वहाँ सिंहासन में विराजते हैं लक्ष्मी देवी के साथ में, राजा और रानी के रूप में, हाँ वैकुंठाधिपति के रूप में, और सब उनकी पूजा उतारते हैं, आरती उतारते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके गीत गाते हैं उनके गौरव के, उनकी पूजा अर्चा होती है, भोग लगता है उनको मंत्र मंत्रोच्चार के साथ में, तो उनका कहते हैं ऐश्वर्य भाव। लेकिन ब्रज में जब आते हैं वो, जैसे अपने वो ऑफिसर जो है अपने घर पे आता है तो तुरंत जो टाई वाई सब निकाल लेता है, तुरंत पैजामा पहन के आराम से सोफा पे बैठ जाता है, फिर एक बच्चा भगवा के आके सर पे बैठ जाता है, उसके कंधे पे बैठता है, यहाँ से वहाँ कूदता है, उस चश्मा खींचता है, उसका पेंट खींचता है, तभी वो अधिकारी के रूप में बर्ताव नहीं करता है, वो सब अधिकार छोड़ के आता है घर ऑफिस में अपने, और एकदम प्रेम से अपने पत्नी के साथ में। माता आई के बोले कि बेटा क्या किया तुमने, दिन भर इतना देर से क्यों आए, जल्दी क्यों नहीं आए, बड़ा अफसर है वो, लेकिन घर में माता डांट रही है उसको। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऐश्वर्य भाव है उसको छोड़ के वो घर पे आता है। उसी तरह से ठाकुर जी जो है वो वैकुंठ से अपना जो अधिक ऐश्वर्य भाव है उसको त्याग करते हुए ब्रज में आते हैं, यहाँ तक कि ब्रज में वो जूता भी नहीं पहनते हैं, पैरों में कुछ पहनते ही नहीं है, नंगे पैर घूमते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, केवल उत्तरी वस्त्र लेते हैं, वनमाला पहनते हैं, हाँ बांसुरी धारण करते हैं, मोरपंख पहनते हैं, वो सब वैकुंठ में नहीं होता है, वैकुंठ में मुरली नहीं बजती है, केवल ब्रज में बजती है, क्योंकि ये उनका घर है, वो घर में जब आते हैं वो सारा अपना ऐश्वर्य छोड़ के आते हैं। इसलिए कोई सखा है उनके, कोई माता है, पिता है, कोई सखियां हैं, कभी भी उन्होंने अपने आप को उनकी ओर भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, अरे भगवान है हमारी ये, अरे ये अखिल ब्रह्मांड नायक है, ये परम ब्रह्म है, दंडवत प्रणाम करो या दूर से बात करो उनसे, ऐसा नहीं कभी किया। हंसी मजाक, हास परिहास, ये सब जो चीज़ें हैं वो ऐश्वर्य भाव में नहीं हो सकती, वो प्रेम से हो सकती है। तो ये सब जो भूमि है ये भगवान की क्रीड़ा भूमि है, खेलन वन है सब, ये सब जगह भगवान खेलते हैं, सब कुछ भूल कर खेलते हैं, और यहाँ तक खेलते हैं कि वो सभी अपने जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं उनके, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, और शिव जी महाराज हैं, और वायु है, चंद्र है, सोम है, वरुण है, वो सबको भूल जाते हैं यहाँ पर आने के बाद, केवल घर के भाव में रहते हैं यहाँ पर, इसलिए उनके अंतरंग लीला है सब। और कोई सखा भी कभी भी उनसे कभी ऐसे प्रस्तुत नहीं हुए कि भगवान, उनको डांटते थे, उनके साथ कुश्ती खेलते थे, उनको हराते थे, उनसे उनको दंड भी देते थे, जब कोई खेल में हार गए भगवान तो वो भगवान पे कंधे पर बैठ के एक राउंड लिया करते थे क्योंकि खेल का भाव है ना, भगवान भी हार जाते थे कुश्ती में, और जो हार जाते थे उसको सबको कंधे पे लेके घूमना है सब जगह पे, और भगवान ऐसे घुमाते थे उनको, तो भगवान जीतते थे, भगवान के उनके कंधे पर बैठ के घुमा करते थे। तो ये क्या कहते हैं, प्लेफुल पास्ट है, मतलब ये क्रीड़ा है भगवान की, खेलने की जगह ये। तो ऐसी जगह पर जब भगवान खेल करते हैं तो एक बार उनको ऐसा मन में विचार आया कि भगवान के मन में कब कोई इच्छा उत्पन्न होती है लीला करने की या भगवान को आनंद देने की, इसे कोई पता नहीं लगा सकता है। जैसे एक कथा में हमने सुना था कि वो जब कालिया का उन्होंने दमन किया वृंदावन में, तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीला करते हैं, ऐसा भी नहीं कि एक ही लीला सेम हर युग में करते हैं, एकदम बोरिंग हो जाता है वो, ऐसा भी नहीं होता, हर एक लीला करते हैं, कालिया दमन की लीला हर अवतार में करते हैं, हर कल्प में करते हैं, लेकिन हर बार अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो हमारी जो भागवत में कथा आती है उसमें क्या लिखा है कि वो भगवान ने उनको कालिया को कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, तो ऐसे वर्णन आगे आता है कि वो फिजी देश जो है वहाँ पर चले गए, कालिया को वहाँ निवास दिया, वो एकदम शुद्ध हो गया, सब पाप उसका विष जो है निकल गया और रह गया। एक और कल्प में क्या हुआ, भगवान की इच्छा हुई चलो हमको आप सैर कराओ, सभी स्वर्ग लोगों की सैर कराओ, तो कालिया नाग के पंख निकले और कालिया बना सर्प पक्षी, और सर्प पक्षी पर बैठकर कालिया ने भगवान को स्वर्ग लोकों की यात्रा कराई, घुमा लाया उनको, एक राउंड ले आओ उनको जरा घुमा लाओ, तो इंद्र लोग, वरुण लोग, सब लोग में जाके घूम के आए भगवान, फिर वापस पृथ्वी पर आए, फिर कालिया अपनी जगह चला गया। ये भगवान का लीला करने की प्रवृत्ति है। तो इस जगह पर क्या हुआ, जब भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने कहा सीतामा तुम गरुड़ बन जाओ, हम आप पर बैठ कर सैर करेंगे। तो भगवान की इच्छा से, भगवान की लीला से सीतामा जी गरुड़ बन गए और भगवान ऊपर सवार हो गए, और भगवान ने सैर किया बहुत आसमान का गरुड़ के ऊपर बैठ कर, इसलिए यहाँ पर नाम पड़ा गरुड़ गोविंद जी। और गरुड़ गोविंद जी के पास में चरणों में देखा आपने, एक तरफ सत्य मामा जी, एक तरफ रुक्मिणी जी हैं, और लक्ष्मी जी प्रकट हुई यहाँ पर। इसका भी उन्होंने बताया रहस्य ऐसा है कि लक्ष्मी जी को वृंदावन में प्रवेश नहीं था, क्योंकि ये जो होता ना ऐश्वर्य भाव, ये भगवान यहाँ पसंद नहीं करते। जब उनको कहा गया कि आपको गोपियों के साथ में ये गोबर का काम करना होगा, कंडे बनाने पड़ेंगे, दूध निकालना पड़ेगा, गाय को साफ करना पड़ेगा, चराना पड़ेगा, वो भी गोपियों के अंडर। ऐसा नहीं कि तुम नेता बनोगे और सब गोपियां तुम्हारे अंडर काम करेंगी, आप बैठ के आदेश करोगी, फिर भी ऐश्वर्य भाव है इसमें नहीं। सबसे जो छोटी गोपी है उसके नीचे आपको काम करना होगा, अभी ऐसे सारे काम करने होंगे, गोबर में बैठकर कंडे बनाना। आपको पता ना कंडे कैसे बनते हैं? गोबर लेते हैं, फिर ब्रश ब्रश लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, फिर उसके बनाते हैं, उसको पेड़ पे लगा देते हैं एक एक करके, फिर सब सुखाते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर सर पे धारण करके उसको ले जाते हैं, स्टॉक करते हैं घर में, फिर रसोई में उसको लगाते हैं, एक एक लगाते रहते हैं, उसमें अग्नि का निवास है ना उसके अंदर। तो इतना सारा काम वो भी ऐसे निम्न स्तर का, मतलब हम नहीं कर पाएंगे, हम तो लक्ष्मी देवी है वैकुंठ की, तो उनको ब्रज में प्रवेश नहीं दिया। यहाँ पर तो सखी भाव है, हमने कल बताया था ना, यहाँ पर कोई लक्ष्मी खुशी का कोई खास कोई स्थान नहीं, लक्ष्मी का स्थान वैकुंठ में है ऑफिशियल एकदम, लेकिन ऐसे अंतरंग स्थान तो उनको प्रवेश नहीं है, इसलिए ये जगह जो है वृंदावन के सीमा के बाहर है, इसलिए लक्ष्मी जी की यहाँ प्रकट हुई है और ठाकुर जी के सामने बाजू में खड़ी है। आपने दर्शन किया ना, बहुत सुंदर, दो गरुड़ के पैर हैं, भगवान की छाती के सामने गरुड़ जी का मुख है, हाँ दो ऐसे गरुड़ जी के पंख निकले हुए हैं, और ये जो गरुड़ गोविंद जी हैं ये 12 भुजा वाले हैं, 6 भुजा एक तरफ है, 6 भुजा एक तरफ है, कई इसके रहस्य हैं। एक रहस्य ऐसा है कि उसकी पूरी मैं कहानी आगे पता करूँगा। 6 गोपियाँ ये जो है आपके जो जिसके किनारे आप बैठे हैं ये गरुड़ गोविंद कुंड है, और उसके किनारे में 6 गोपियाँ तपस्या करती थी और भगवान को छाछ पिलाकर प्रसन्न किया करती थी। तो गोपियाँ यहाँ पर आके भगवान को रिझाने के लिए तपस्या करती हैं, पूजन करती हैं उनका, और एक बार उनको उन्होंने 6 टोकरी कटो क्या कहते हैं उसको भगवना में, क्या वो क्या कहते हैं कुल्लड़ में, ऐसे समझा पात्र में एक साथ दे दिया छाछ उनको। तो भगवान ने 12 भुजा प्रकट करके उसको एक साथ पा लिया, इसलिए ये गरुड़ गोविंद जी 12 भुजा वाले हैं। साथ साथ में जो कालिया की कहानी है, कालिया के अंदर जब कालिया का दमन किया गया तो बहुत देर भगवान जमुना जी के अंदर है ना, ठंडे पानी के अंदर, तो बहुत ऐसे एकदम ठंड लगी उनको भगवान को। तो वहाँ पर एक टील है जहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर है, जहाँ पर भगवान की विग्रह को वज्रनाभ ने स्थापन किया था, तो भगवान उस टील पर चढ़ गए और वहाँ बैठ गए ठंड अवस्था में। तो 12 सूर्य आए उस समय और भगवान को उन्होंने हीट दिया, अपनी उष्णता को दिया, तब ठंड लगी रही भगवान को, फिर भगवान सही हो गए और उसके बाद में और हीट देते रहे तो उनको पसीना आया, उसको कहते हैं स्वेद, उसको कहते हैं प्रस्कंदन, प्रस्कंदन का मतलब है स्वेद निकलना, दिव्य स्वेद, हमारा जैसा नहीं मधु वाला, सुगंधित दिव्य जल है भगवान के शरीर से निकला और वो सारा जो स्वेद है एकत्र होकर वो तील के नीचे जमा हो गया, जिसका नाम पड़ा प्रस्कंदन सरोवर, जिसका दर्शन हमने 22 साल पहले यहाँ पर किया था, 24 साल पहले, तभी था, अभी लुप्त हो गया वो। तो उस टील का नाम पड़ा क्या, द्वादश आदित्य टील। तो ये बालक भगवान है कि नहीं, ऐसा भी संदेह मन में आया उन आदित्यों के, मतलब सूर्यों के, तो उनको ये बताने के लिए कि मैं वही हूँ, क्योंकि सूर्य जो है वो देवता है ना, और वो ऐश्वर्य भाव में है, क्योंकि वो भगवान को ओम नमो नारायणाय ऐसे ही करते हैं, उनके हाथ गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं, उनके अधिकारी है वो, ऑफिसर है उनके, दुनिया को उष्णता और प्रकाश देना उनका काम है उनके नेतृत्व में। तो फिर वो सोच रहे थे कि अरे हमारे भगवान तो वैकुंठ में बैठते हैं, वहाँ पर विराजमान रहते हैं बड़े थाट के साथ, हम तो बालक बनकर नदी में कूद रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या यही भगवान है क्या? तो फिर भगवान ने यहाँ उनको 12 भुजा निकाल कर दिखाया कि मैं वही भगवान हूँ यहाँ पर क्रीड़ा कर रहा हूँ, तो इसलिए 12 भुजा यहाँ की उनकी। तो बहुत सुंदर है यहाँ पर, ये जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर सब वो एक बेलू आ गई है सब जगह पर, उसके नीचे पानी है, हाँ देखो बच्चे लोग कूद रहे हैं वहाँ पर, अच्छी तरह स्नान कर रहे हैं, बहुत सुंदर पानी है, जहाँ पर ऐसे होता है ना वातावरण जल के ऊपर, वो जल बहुत शुद्ध होता है, बहुत अच्छी तरह से बनाए रखता है उसको, तो बहुत गहरा पानी है उसके अंदर, बहुत सुंदर ऐसा उसको गालीचा लगा के रखा है हरे रंग का। तो इस कुंड के सामने वो गोपियों ने तपस्या किया था। तो जब ये आतंक हुआ औरंगजेब का, तो जो पुजारी थे यहाँ कर वो डर गए बेचारे उनके आतंक से, ठाकुर जी के विग्रह को नष्ट करते हैं वो, भ्रष्ट भी कर देते हैं, तो उन्होंने उस विग्रह को इस कुंड में कर दिया। और ठाकुर जी इस कुंड में रहे बहुत बहुत साल तक। फिर जब वो आतंक बहुत समाप्त हो गया, तो उस समय जो पंडा थे उनका नाम था आत्माराम, ब्राह्मण थे, उनको भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं इस कुंड में बहुत साल से पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकाल कर उसको स्थापन करो। तब स्वप्न के आदेश के अनुसार उन्होंने इस कुंड से भगवान के विग्रह को ढूंढा, प्रकट कराया उसको। और उस समय बहुत गरीबी थी, कुछ सब नष्ट हो चुका था। तो करील के, करील जानते ना आप, करील टेटी बोलते हैं उसको, टेटी हाँ, ब्रज की बहुत स्वादिष्ट वस्तु है वो। और कहते ब्रज में आकर अगर टेटी का आचार नहीं खाएंगे तो क्या किया आपने, ऐसे बोलते हैं। तो ठाकुर जी को बहुत पसंद है ये टेटी, कई उसमें भजन लिखे गए साधुओं ने, लिखे संतों ने, ये टेटी का आचार जो है ठाकुर जी को बहुत पसंद है। वो टेटी गोपियों ठाकुर जी को बड़े प्रेम से भोग लगाती थी। तो ये करील जगह जो वृक्ष होता है उसके अंदर कोई पत्ते नहीं होते, केवल शाखा होती है हरे रंग की और फल होते हैं, और वो मराठी में बोलते हैं करवंद टाइप होते हैं, छोटे से होते हैं, और वो किसी मौसम में आते हैं, सब मौसम में नहीं आते। तो करील के, बहुत सारे करील के छाया के नीचे इस विग्रह को स्थापन किया गया। फिर कुछ साल बाद में एक राजा यहाँ पर आया, शायद राजस्थान से आया, तो देखा यहाँ पर कि सब वैसे ठाकुर जी का प्राचीन विग्रह है, तो बज्रदाम ने स्थापन किया था, वैसे जीर्ण अवस्था में कहीं रखा है उनको। तो उन्होंने फिर मंदिर बनाया ठाकुर जी के आनंद के लिए, और फिर उसकी पूजा अर्चना स्थापन हो गई। बहुत विशेष मंदिर है ये, इससे ब्रजवासी लोग जो हैं वो सब जगह दर्शन नहीं करते हैं कभी, उनके ठाकुर जी की श्रद्धा जो है उनको कई जगह पर है। गिरिराज जी में विश्वास करते हैं, बिहारी जी में विश्वास करते हैं, सप्त विग्रह में विश्वास करते हैं, गोपेश्वर पर उनका बहुत विश्वास है। तो ऐसे करोड़ गोविंद जी पे उनको ब्रजवासियों का बहुत श्रद्धा है। जो मंदिरों के गोसाई लोग भी जो हैं वो भी गरुड़ गोविंद का दर्शन करते हैं, तो वो जानते हैं प्राचीन विग्रह हैं। हाँ, कोई ऐसे किसी आश्रम ने किसी महंत ने बनाया विग्रह नहीं है, ये भगवान के द्वारा, भगवान की इच्छा के द्वारा प्रकट किया गया विग्रह है। तो इसलिए ये जगह जब हम पहुँचे हैं, मुझे ऐसा अनुभूति हुआ कि ये यहाँ पर हम पहुँच गए, आज दर्शन किया ठाकुर जी का, बड़ा भाग्य की बात है, बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। और आप मंगला के आज दर्शन में आएंगे तो मंगला दर्शन में उनका पूरे शरीर का दर्शन होता है, हाँ, 12 भुजा, 2 गरुड़ के पैर, 2 ठाकुर जी के पैर लटक रहे हैं उनके ऊपर, पंखा दर्शन है, रानियाँ बैठी हुई हैं, ये सब मंगला में होता है और शयन दर्शन में होता है। तो कभी आप सब शयन में आएंगे अगर शाम को 8 बजे, या सुबह 5:30 को मंगला में आएंगे, तो आपको ठाकुर जी के 12 भुजाओं का भी दर्शन होगा। और इस विग्रह में आप देखेंगे तो आपको ठाकुर जी ऐसे श्रृंगार किए हुए हैं, तो उनको छाती में ऐसे श्रृंगार में भी छेद हैं, और वहाँ पर गरुड़ जी का मुख जो है ऐसे दर्शन होता है उसका। जैसे गरुड़ में बैठे हैं, जैसे घोड़ा में बैठता है, ऐसे घोड़ा में बैठे हुए हैं ठाकुर जी, गरुड़ में बैठे हुए हैं 2 पैर डालकर, तो उनका जो मुख है वो ऐसे यहाँ पर आएगा ना ऐसे, तो वो उन्होंने खुला रखे, उसको मुकुट पहना दिया है। आप देख सकते हैं कितने अद्भुत विग्रह हैं ये, पूरे भगवान के निर्माण में ऐसा कोई विग्रह नहीं है जहाँ पर भगवान गरुड़ पे सवार हैं, 12 भुजाएं हैं उनकी, हाँ, और थाट के साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन भाव वही है, भाव ऐश्वर्य का नहीं है। गरुड़ जी महाराज तो भगवान के वाहन है, वो भी ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, लेकिन ब्रज में उन्होंने गरुड़ जी को आह्वान नहीं किया, उन्होंने श्री रामा को यहाँ पर गरुड़ बनाया, मतलब भाव को कोई डिस्टर्ब नहीं किया है, भाव तो उनका ब्रज का ही है, सख्य भाव, प्रेम भाव है, उसी भाव में लीला किया यहाँ पर। कैसे गरुड़ गोविंद जी का दर्शन हमको हुआ, ये हमारी बहुत भाग्य की बात है। ठाकुर जी का लाख लाख धन्यवाद करना चाहिए, ऐसे पवित्र स्थल पर आकर उनको दर्शन दिया ठाकुर जी ने, प्रसाद दिया। श्री गरुड़ गोविंद जी महाराज की जय हो।